अरे पहले जो यहाँ पर रहता था
और दीदी प्रभु ला रहे
श्रीमद भागवत दशम पैंतालीस उन लोगों ने पहले जाने के पहले देश अक्रूर कृष्ण और बलदेव को मथुरा लिया है। उसके बीच की सारी बातें हम लोगों ने बतलाया है। कंस मारा गया और कंस के मारे जाने के बाद जनक और जन्म वसुदेव जी और देवक दोनों को बंधन से छुड़ाया और उग्रसेन को तुम सुनो तो अच्छी तरह से तुम चुपचाप बैठ करके सुनो, सभी लोग सुनो, अन्यथा फिर हम प्रवचन करने आएंगे नहीं।
लास्ट वर्ड की
जन्य जन्म वसुदेव और देवकी का बंधन छुड़ाया, उन्हें सांत्वना दिया और श्री नंद बाबा से यशोदा की उनकी बात की और चले आओ ना तब वो नीचे बैठे हुए सब ऊपर में जगह हुए
और ये सब कम बहुत फॉरवर्ड बहुत फॉरवर्ड
थैंक सो मच प्लेस इधर में बहुत जगह पड़ी। On this line, gentlemen should be there. There is so much places here for ladies. के माता पिता का बंधन छुड़ाने आए, बंधन खोल दिया। खोलने के बाद पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम मा भूत इति निजा माया ततान जन्मोदिन। जब पिताजी के पास में गए माता जी के पास में तो बलदेव जी पिताजी के पास में गए और कृष्ण माता जी के पास में और उनको प्रणाम किया। उनको माता पिता हाथ जोड़ करके खड़े रहे, कृष्ण का वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा कि कृष्ण कैसे चांद मूर्ति को मारा और तत्पश्चात मिनटों में कंस को मार डाला बिना परिश्रम के, जैसे सिंह एक बकरी को मारे ऐसे बिना पराक्रम से ही मार डाला। माता जी देख करके उपलब्ध अर्थ कहना कि इनको कुछ ऐश्वर्य भाव हो गया मेरे पर, इसलिए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए दोनों। तत्पश्चात पुरुषोत्तम जो भगवान हैं माँ भूती थी, ऐसा न हो कि मैं ये भगवान के रूप में देखी, इसलिए अपनी माया ततान अपनी माया को उन पर लगाया। जन्मोहिनी जन्मोहिनी जो विमुख को मोहन करने वाली और उन्मुख को भी मोहन करने वाली, जो विरोधी हैं उनको अनुकूल प्रतिकूल रूप से मोहन करने वाली महामाया के रूप में, और अपने जन अपने निज जन हैं उनको योग माया के रूप में, उनके ज्ञान को आच्छादित करके, ऐश्वर्य भाव को आच्छादित करके, माधुर्य भाव को बनाने वाले इस माया को आदेश दिया, और साथ ही साथ उनको मुक्त कर। कैसे? और मरे आश्चर्य को देख करके, तो ये हमें प्यार नहीं करेंगे और हमारी लीला नहीं हो सकेगी। इसलिए ऐसा न हो इसलिए उन्होंने अपनी लीलाओं को आगे चालू रखने के लिए उन्होंने माया के द्वारा उनके ज्ञान को तीसरा वैसे वित्त साग्रहम सात्ताप्तः प्रशयानवंत। बहुत पहले वाला उस समय में कृष्ण अपने भाई के साथ में बलदेव जी के साथ बहुत नम्रता से बैठ करके मैया के चरणों में सिर झुका दिए, और बलदेव जी ने सीता जी के चरणों में हरी हार झुका दिया और बोले कि पिता, और बोले मैया, जब से मेरा जन्म हुआ सबसे बड़े हुए नरक कंस मुझे मारने डाले, बहुत ऊंची नरक, और हमको यहां से गोकुल में भेज दिया, इसलिए बाल पाओ बच्च और किशोर की लीलाएं और जो वास्तविक रस है उसका आप लोगों ने आस्वादन नहीं किया। बचपन में पिता माता पुत्र की सेवा करके लाल पान करके बहुत सुखी होता है, तो हम लोगों को आपने मुझे हम लोगों को दोनों भाइयों को आप प्यार नहीं दे सके, दूध नहीं मैया पिला सकी, पिता लाल पालन नहीं कर सके, बाल्य पौगंड और पैसों तथा इसका जो सुख होता है पिता माता को पुत्र के लिए वो आपको अनुभूति नहीं हुई। बाल्य जन्म से ही गोकुल चले गए, कब तक रहे? 3.5 वर्ष की स्थिति तक। बाल्य पौगंड और कैसो, बाल्य होता है 5 वर्ष तक, पौगंड होता है 10 वर्ष तक, और कैशोर होता है 15 वर्ष तक। साधारण ऐसा नियम है, बाल्यावस्था 5 वर्ष तक की। बच्चा इधर उधर चलता है, कभी पैर पर चलता है, कभी शुरू पर चलता है, और पौगंड होता है अभी छोटा जब, और पौगंड होता है 10 वर्ष तक साधारण लोगों के, और कैशोर होता है 15 वर्ष के साधारण लोगों के, जिसके बाद में युवावस्था आ जाती है। युवा कैशोर की भी 3 स्थितियां हैं, पहली वयसंधि, फिर उससे बड़ी स्थिति, और फिर पूर्ण व्यक्त किशोर और पूर्ण भी कैशोर। पौगंड में भी है कई 3 स्थितियां, ये कह रहे हैं कैशोर पुत्र अभवन पति बाल सौगंध और किशोर की लीलाओं का आप लोग रसास्वादन न कर सकें, किंतु देखा जाता है कि कृष्ण यौवन अवस्था के प्रारंभ में यहां पर रहा है। क्यों? क्योंकि मथुरावासी महिलाएं जब कंस और चारुण से इनका युद्ध हो रहा था और कंस ऊपर मंच में बैठा था, देवकी वसुदेव को वहीं पर बैठाया गया था, नंद बाबा को भी और सखाओं को वहीं पर बैठाया गया था, क्योंकि इनके देखते देखते ही इनको इसको कृष्ण और बलदेव को हम मारे, ये देखें। इसलिए वो कह रही हैं कि पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं, अतः यौवन वहां पर आरंभ हो गया, तो ये 16 वर्ष की स्थिति में आनी चाहिए उनको। समाप्ति होने पर भी होता है तो 16 वर्ष यौवन का आरंभ होता है तो आना चाहिए, किंतु कृष्ण जब आए तो उस समय उनकी उम्र हंस को मारते समय में 10 वर्ष की तना मरी, पूरा 11 वर्ष भी नहीं हुआ था, तो फिर ये कैसे सामंजस्य होगा। इसके लिए सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और कृष्ण के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे हैं, और लोगों के लिए तो वो साधारण नियम है, 5 वर्ष तक बाल्यकाल, 10 वर्ष तक पौगंध और 15 वर्ष तक ऐसो, किंतु कृष्ण के लिए नहीं। क्यों? राजकुमार की भांति जैसे कि पुष्ट होता है जल्दी, वैसे मक्खन मिश्री खाने वाले ब्रज के प्रचंड वातावरण में पलने वाले नंद बाबा के राजकुमार कृष्ण 3.5 वर्ष की अवस्था में उनका पौगंध समाप्त हुआ, क्योंकि 3 वर्ष 6 महीने या आसपास में दामोदर जी की लीला भी, दामोदर लीला, और उसी के बाद में विघ्न के कारण गोकुल छोड़ देना पड़ा 3.5 वर्ष की उम्र, इसके बाद में उनकी पौगंड लीला आरंभ हो गई, इसलिए 3.5 वर्ष 8 महीने तक उनका पौगंड माने जाए
बाल्य,
वो 5 वर्ष नहीं, और पौगंड अवस्था साधारण रूप में 10 वर्ष की होती है। इन्होंने 7 वर्ष में गोवर्धन को उठा लिया और गोपियों से इनका मिलन हुआ, पूर्वराज हुआ, इसलिए कैशोर अवस्था आ गई। कब से? 6.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष 8 महीने से लेकर के 10 वर्ष तक ये किशोर रही, और 10 वर्ष के बाद में 10वां जब आरंभ हुआ और वो कार्तिक महीना आया, उसी का लीला का सब विवरण किया है कि कौन कौन दिन में क्या हुआ, तो उसमें वहां पर किशोरावस्था में गोवर्धन को उठाया 7 वर्ष की उम्र में, उस समय पौगंध समाप्त हो गया 6.5 महीने के 6.5 वर्ष की उम्र के बाद में, और 7वें वर्ष में गोवर्धन को उठाया, यहाँ से व्यस्त किशोर आरंभ हुआ, और इसके बाद में ही उन्होंने राज इत्यादि किया, और ये राज करने के बाद में किसी दैत्य का वध किया, और उसके बाद में नारद जी के उपदेश से वो मथुरा में आए, और 10 वर्ष 11 वर्ष पहले ही 10 वर्ष 8 महीने के अंदर में यहाँ पर कंस का वध किया। जिस समय वध किया उसके पहले दिन तक कार्तिक के महीने से उनका ये कैशोर समाप्त हुआ और व्यक्त यौवन वहां पर उत्पन्न हुआ कृष्ण का। 11 वर्ष की उम्र हो गई तो 10 वर्ष 8 महीने तक किशोर अवस्था, तो ये सब उनको आस्वादन का मौका नहीं मिला माता पिता से। जिस दिन वो कृष्ण आए और कंस को मारा वो व्यक्त यौवन में प्रवेश कर गए, इसलिए वो ठीक कह रही है कि अब व्यक्ति अभी अभी यौवन पूर्ण अवस्था में उसके पहले ही उसके पहले की बात कर, इसलिए उन्होंने कंस को उस दिन मारा जबकि ये वयस्क थे। तब कृष्ण में एक खूबी है, उनका यौवन रहे या 80 वर्ष के हो जाए, 100 वर्ष के हो जाए, जितने भी वर्ष वो सब समय किशोरावस्था जैसा उनका, ये भगवत्ता का लक्षण है। जवन जैसे नहीं लिखेंगे कृष्ण, सभी गोपियों ने उन्होंने कहा है, मथुरा वासियों ने किस लिए कैसा कहा, क्योंकि वो मथुरा वासी है, वो किसी और अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु उनका रूप वैसा रहेगा। कैसे, शायद 100 वर्ष की उम्र में जिस समय में कृष्ण द्वारकापुरी में थे और उनके पुत्र सब रानियों से शादी हो गई थी, उनके पुत्र कलत्र भी पैदा हो गए थे, उस समय उनका पुत्र प्रद्युम्न जी जो कि कामावतार थे, वो किशोर अवस्था में जब उषा के साथ में वहाँ पर कौन उसके साथ में रति देवी के साथ में आए, तो इन लोगों ने देखा कि कृष्ण ये बस लजा करके रुक्मिणी सप्तभामा सब हट गई, समझा जी कृष्ण आ गए, क्योंकि कृष्ण ही जैसे वो सुंदर थे, तो उस समय भी कृष्ण ऐसे सुंदर थे मानो वो प्रद्युम्न जी आए, 14-15-16 वर्ष की स्थिति की सोच तो कृष्ण वो थे। इसलिए कृष्ण का रामचंद्र जी का किशोर अवस्था वो ऐसे ही बनेगा, चाहे वो जितना भी जन उनको ऐसी वो पक्की नहीं रेखाएं आती हैं केवल, और सब समय उनका किशोर रूप रहता है। What I told, you should told something, but because they are waiting something, and I will wait something. Little, little you should give. किसी कारण से हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने मुझे गोकुल दे दिया हम लोगों को, इसलिए बाकी ऐसी जो सुख हमको को करना चाहिए हम भी नहीं भोग, और आप लोग भी पिता जैसा स्नेह संतान को करते थे जैसे प्यार से करती है, वो भी आप लोगों को वो बात बच्चे का सुख आप लोगों को नहीं मिल सका। विशेष करके जिस पिता और माता के द्वारा यह शरीर मनुष्य शरीर मिला है और जिन्होंने अपने गर्भ में और पीछे से सब प्रकार से पिता ने जिस प्रकार पिता जैसे पुत्र की सेवा करते हैं पालन पोषण करते हैं, और वो बेटा जब भी बड़ा हो जाए तो जिसने रक्षा किया जो लोगों ने पालन पोषण किया बहुत क्या ये बेटा था, ऐसे ऐसे सब खराब होता गया। इस प्रकार का दूरी रोक, इस प्रकार जब वो बेटा बड़ा हो जाए तो 100 वर्ष का जीवन धारण करके भी 100 वर्ष का वो जब भी हो जाए, एक वर्ष तक भी माता पिता की सेवा करके उसका ऋण मोचन करने में समर्थ नहीं होता है। 100 वर्ष तक का भी जीवन रहे तो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, लड़की के लिए भी दोनों के लिए पिता और पुत्र दोनों के लिए। जस्ट
तु तयो आत्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रेत्य स्वमान्तं खादयति तो जो पुत्र बड़े होने पर समर्थवान हो जाए या जो कन्या समर्थवान हो जाए पुत्र और कन्या और समर्थ होने पर भी देह द्वारा धन द्वारा माता पिता का जीविका संभालन नहीं करता उनकी सेवा नहीं करते नहीं करते तो परलोक में भी जमदूतगण उनको उनका ही मांस खिलाया करते हैं उनको अपना मांस खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा आया है। ये क्या तुम उलट पुलट कर रहा है? मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरुम पिप्रम प्रपन्नम च कल्पो अभिप्रत प्रसन्न मृत समर्थ पुत्र समर्थ व्यक्ति बड़े होने पर माता पिता का यही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समझो केवल पुरुष के लिए ही नहीं माता पिता कुल के वृद्ध साध्वी स्त्री ऐसी स्त्री नहीं साध्वी स्त्री के लिए था साध्वी स्त्री शिशु पुत्र गुरु ब्राह्मण और आश्रितों का पालन नहीं करता तो जीवित ही मृत्यु के समान है और किसी कारण से उसको स्वर्ग इत्यादि भी हो गया तो स्वर्ग में भी अपना मांस खाना पड़ेगा। रामचंद्र जी वनवास के समय में एक बार किसी ऋषि आश्रम ऋषि के साथ में जा रहे थे चल से दूसरी जगह उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर तालाब है चारों तरफ में बहुत सुंदर है घाट बंधे हुए हैं ऋषि मुनियों जैसा आश्रम लग रहा था और उस तालाब के पास ही में सरोवर के पास ही में एक हृष्ट पुष्ट आदमी का शव पड़ा हुआ था मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ कुछ भाग उसका नहीं था और बाकी भाग था और वो सड़गल नहीं रहा था। देखकर के रामचंद्र जी ने उस ऋषि से पूछा भाई क्या बात है यहाँ पर ये आदमी पड़ा हुआ है कि इसका शरीर सड़गल नहीं रहा और सुंदर सरोवर मुनियों का आश्रम जैसा ये आश्रम बहुत ही समृद्ध हिरण इत्यादि यहाँ पर है पशु पक्षी हैं किंतु यहाँ पर एक मनुष्य मरा हुआ का पड़ा हुआ है और ये कल सड़ नहीं रहा और इसके कुछ अंश कटा हुआ है। तो ऋषि हंसने लगे और ऋषि अगस्त जी का शिष्य होगा अथवा उनका कोई संबंधी होगा या खुद अगस्त जी हो वहां करके कहने लगे इसके पीछे एक इतिहास है इस स्थान की एक समृद्ध राजा थे बचपन में माता पिता ने उनका पालन पोषण किया कुछ दिनों के बाद में उनकी शादी इत्यादि हुई गृहस्थ आश्रम में आए और कुछ दिनों के बाद में वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या में लग गए। माता पिता का आश्रित जनों का कोई भी सेवा इत्यादि नहीं की माता पिता का भी आदर नहीं किया उनको पालन पोषण नहीं किया और इसके बाद में कठोर तपस्या से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग में पहुंचे सारे सुख उनको उपलब्ध हैं किंतु भोजन नहीं मिल रहा भोजन स्पर्श नहीं कर सकते तो ऋषियों से वहां के स्वर्ग देवताओं से पूछा कि मुझको भोजन क्यों नहीं मिल रहा मैं भोजन स्पर्श क्यों नहीं कर सकता तो आपने माता पिता की सेवा नहीं की और तपस्या से स्वर्ग आपको मिल गया
किंतु आपके ऋण जो माता पिता के हैं और सब ऋण है आपके चुके नहीं, इसलिए आपको अपना ही मांस खा करके जीवित रहना होगा। तो आपका मांस तो स्वर्ग में उपलब्ध नहीं, इसे आप जो मर करके यहाँ पर शरीर छोड़ करके वायु शरीर से यहाँ आए हैं, आपका शरीर वहां पर है और वो ताजा है, और आप प्रतिदिन जाइए और वहां मांस का टुकड़ा काट करके अपने शरीर का खा करके फिर यहाँ आइए। आपको सुख तो यहाँ के भोगेंगे किंतु मांस खाना पड़ेगा। तो ये श्रीमद् भागवत में भी वही कह रहे हैं, जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, जिनसे जन्म ग्रहण किया, तो उनको जब ऊंचा भी स्थान भी मिल जाए तो वहां पर भी अपना मांस खाना पड़ेगा। फिर आगे क्या हुआ, वो राजा जो स्वर्ग में था उन लोगों से पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम इस घृणित कार्य से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि किसी वजह से और किसी रूप में आप यदि आपके हाथ में सोने का कंगन है या यदि अगस्त ऋषि को दान कर दें, साधारण लोगों को नहीं, दान करने स्वास्थ्य तो अगस्त ऋषि जैसे महात्मा को यदि दान करें और वो ग्रहण कर लें तो उसके पुण्य से आपका यह शिष्य मुक्त हो। अजय अगस्त जी तो दान नहीं लेते, वो आए नीचे और अगस्त जी के आश्रम में गए और उनसे निवेदन किया कि आपको मैं अपना कंगन दान करना। तो उन्होंने कहा कि हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो पति ग्रहण नहीं करते, अजय आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए जिससे मैं इसे मुक्त हो जाऊं। आप समर्थवान व्यक्ति हैं, दान लेकर के पचाना हजम नहीं, और वो भी गुरु वैष्णव और भगवान के नाम पर दान लेकर के हजम करना जैसे आजकल के हमारे लोग करते हैं, वो तो नरक में भी जगह नहीं होगी। यदि उस दान देने से अगस्त जी जाते हैं तो हम लोगों को कैसा होना चाहिए, विचार को विचार करो। इसलिए अपने लिए मत लो, गुरु वैष्णव के लिए यदि लो करके संपूर्ण उनको दो और वो हजम कर सकते हैं अगस्त ऋषि जैसा है तब तक ठीक है, नहीं तो उनको भी नरक जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगस्त जी से कहा, अगस्त जी को दया आ गई क्योंकि वो समर्थ हैं, भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने वो कंगन को ले लिया और फिर ले करके फिर कुछ ही भगवत सेवा में उन्होंने लगा दिया, इसलिए उन पर तो असर नहीं पड़ा और उधर में वो अपने इस घृणित कार्य से मुक्त हो गया। और सबसे स्वर्ग में जैसे कि देवता लोग वायु भक्षण इत्यादि करते हैं, यज्ञ का अवशिष्ट लेते हैं, इस प्रकार से उसका जीवन समय हो गया। तो यहाँ पर भी यही बतला रहे हैं वाल्मीकि रामायण हमारे साथ वे उपनिषद एक ही बात कर रहे हैं, अभी देख तो नहीं रहे हैं किंतु यदि ऐसा इसके विपरीत करने से ऐसा ही होगा। ये तो हुआ नहीं सेवा करने, और यदि माता पिता से विरोध करें, उनको मारे पीटे अपमान करें, लड़ाई लड़ाई मामला मुकदमा सब करें तो क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, समझो उस माता पिता से जो गर्भ में धारण किया कितना किया गया। और उसी तरीका में आप भगवत के भजन करने के लिए योग्य हो रहे हैं और जानबूझ कर कभी भजन करते हुए भी ऐसे माता पिता से यदि झगड़ा करें तो क्या होगा, विवाद करें, उसको विपत्ति में डालें तो उनको क्या, उनको तो शायद कोई नरक भी अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें, किंतु विश्वास नहीं है ना, किंतु नरक भोगना पड़ेगा, शत्रु की तरफ में पी देंगे दूध लोग, इतने संभाल करके चलो। तब एक बात बतलाई गई, देवत्भुत ताप्त निर्णांग पितृणांग न करो नयंग राज ऋणीचराजन सर्वात्मना जब शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहत्त कर्तु। जिन्होंने मुकुंद की सेवा के लिए संसार के सारे कर्तव्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से भगवान के सरेंडर होकर के आत्मनिवेदन करके और भगवान का संपूर्ण रूप से भजन कर रहे हैं, उनके लिए माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, देवताओं का ऋण, किसी का ऋण नहीं है।
क्योंकि वो भगवान की सेवा में नियुक्त, सब कारिणी तो भगवान के प्रति है, इसलिए वो किसी कारिणी नहीं है। यदि संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके भगवान का सेवा करता है या तो उनके ले में, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी जन्म लेते ही भगवान की सेवा में चले गए, नारद ऋषि जन्म लेते ही 5 वर्ष की अवस्था में माता को छोड़ करके और चले गए भजन करने के लिए संपूर्ण रूप से। चैतन्य महाप्रभु के परिकर रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जितने देखते हैं वो लोग भी घर बार छोड़ करके संपूर्ण रूप से माता पिता को छोड़ करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु वृद्ध मैया और पत्नी अभी विवाहित और घर को छोड़ करके चले गए, किस रूप में चले गए? संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने के लिए, और संपूर्ण रूप से भगवान का सेवा किया, उनके लिए इन लोगों का ऋण नहीं है। और बाकी सब लोगों के लिए, चाहे वो घर छोड़ करके आए और संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया है, अपना कुछ अपनत्व लेकर के चलते हैं, अपने